ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು
हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय Krishna Krishna Hare Hare कृष्ण भगवान की पद पावन श्रील प्रभुपाद की ऑल ग्लोरी टू द सेवन डिवोटी ऑल ग्लोरी टू द सेवन डिवोटी ऑल ग्लोरी टू द सेवन डिवोटी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा निताय निताय गौर प्रेम आनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयते नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नश्वती श्रीकृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविंदाय नमो नमः
तो आज की जो श्लोक संख्या है वो तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक
यत्मार्थ लीला उपयकम् सयोग माया बलम् दृश्यते विहितम् विस्मापनं स्वस्य च सौभाग्यदे परं पदं भूषणं भूषणमङ्गम् यत्मार्थलीलाव्यकं संयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभाग्यदे परम पदम भूषण भूषणंगम यत्मार्थ लीला उपेकम संयोग माया बलम दर्शता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च स्वभावदे विस्मापन परम पदम भूषणम भूषणमंगम
पीछे दोहरा सकते हैं भगवान अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट हुए वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है
ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य सुनिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक स्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। वे समस्त जीवों में प्रधान है। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में ना तो कोई उनके समकक्ष है ना उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मृत्यु लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ये स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षट ऐश्वर्यों में से किसी एक में भी ना तो उनके तुल्य था न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं तो वे प्रकट कहलाती हैं, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट कहलाती हैं। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता, सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा में बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी ना किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्ध्यान हो गए तो ये वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मृत्यु लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मृत्यु लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति ही दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में वे उन पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्य बद्ध हैं। मृत्यु लोक में अपनी अंतरंग शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षट ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई थी। वृंदावन में उनकी रासलीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका ग्रस्त जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मृत्यु लोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी यथा श्री राम नरसिंह तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सब उत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामियों द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोदीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयमरूपं कदामयं ददाते शब्दकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगं ललिता श्री विशाखानुतांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरूपस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादी पाश्चादेश कारिणे। हरे कृष्णा।
तो आज हम जिस श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने इसमें सुना कि किस प्रकार से भगवान अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट हुए। अब पिछले श्लोकों में हम उदाहरण पढ़ चुके हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग माया से इतने ग्रसित हैं कि वो समझते हैं कि कृष्ण जो है वो एक मनुष्य है, भगवान नहीं है। अन्यथा कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान जिस तरह से अपने लीला समाप्त कर वापस अपने गोलोक गमन किए, अप्रकट हुए भगवान, तो बोलते हैं कि भगवान के पाप इतने इकट्ठे हो गए थे कि भगवान ने, क्योंकि लड़ाई कराई ना महाभारत की, इतने पाप इकट्ठे हो गए कि भगवान को तीर लगा। कहते ना, तेरा किया तुझको वापिस आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कृष्ण ने जैसा किया महाभारत के युद्ध में, वैसा ही तीर लगा आकर उनके पैर में और मारे गए। देखा, इसलिए कहते हैं कि कभी दूसरों के बीच में ना ये महाभारत नहीं कराना चाहिए। अभी किसी के पास गए थे भगवद गीता वितरण करने, कहते हैं महाभारत और भगवद गीता घर में रखने से लड़ाई होती है। मैंने कहा नहीं रखते तो तब नहीं होती क्या? तब भी तो होती है, लेकिन सोचते ये हैं कि भगवत गीता रखेंगे तो लड़ाई होगी। भगवान को केंद्र बनाना चाहिए भक्ति करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपोजिट कर दिया है। भगवान को केंद्र बनाया है लड़ाई झगड़े का, सोचते महाभारत होगी। और ऐसे ही जो माया के ग्रसित लोग हैं, माया प्रहत ज्ञानम, वो क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण तो एक मनुष्य थे, उनके पैर में एक व्याघ ने तीर मारा। समझने की बात है कि देखिए कितने सारे अपने शास्त्र हैं, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के तीन महान शास्त्र हैं। कौन कौन से बता सकता है कोई? कौन से तीन महान शास्त्र हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसकोन जिसको फॉलो करता है? हाँ, भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत। इन तीन ग्रंथों को, शास्त्रों को अगर प्रमाणिक माना जाए तो हम जान सकते हैं कि कृष्ण मनुष्य नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। देखिए आपके भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। मैं सृजन कर रहा हूं अपना, क्योंकि मुझे धर्म की स्थापना करनी है। और श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में, एते च अंश कला पुंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदन्ति युगे युगे। हर युग में भगवान आ रहे हैं। एते च अंश कला पुंशा, तो भगवान के कुछ अवतार है आंशिक अवतार और कुछ अवतार है कला अवतार। कुछ अवतारों में भगवान लीला प्रदर्शन करते हैं, खाली लीलाएं करेंगे लेकिन कुछ उपदेश नहीं करेंगे। जैसे भगवान का हैग्री अवतार है या हंस अवतार है, ऐसे 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। तो उसमें भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीला करते हैं, कहीं सिर्फ उपदेश देते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं स्वयं कृष्ण के रूप में, कृष्ण स्वयं आते हैं, तो वो क्या करते हैं? सारी चीजें करते हैं, लीला भी करते हैं। आप सुनते हैं भगवान की लीलाएं, उनकी एक बुक है श्री कृष्णा बुक, उसमें अनगिनत लीलाएं प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, और भगवद गीता का उपदेश भी देते हैं, और महाभारत के युद्ध में मारते भी हैं, इतने सारे राक्षसों का वध भी, असुरों का वध भी करते हैं। तो भगवान सारा कुछ कार्य करते हैं, इसलिए कहते हैं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदन्ति युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से युग में भगवान आते हैं, है ना? ये प्रश्न हमसे कोई पूछे तो जो लोग भक्त हैं वो भी क्या बता सकते हैं हम, कौन से युग में आते हैं भगवान? हाँ जी बताइए, कोई बताना चाहते हैं कौन से युग में आते हैं भगवान? हाँ, हर युग में आते हैं। अच्छा, कृष्ण स्वयं कब आते हैं? हाँ जी, द्वापर में, हर द्वापर में आते हैं। कौन से में आते हैं कोई बताना चाहेगा? एनीबडी वन, कब आते हैं भगवान द्वापर में? कौन से द्वापर में आते हैं? हरि बोल,
ये तो गुरु जी बोल दिया ना कि हर युग में आते थे क्या, भगवान स्वयं कृष्ण कौन से युग में आते हैं, इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में आता है। बताते हैं, वैवस्व नाम की सप्तम मन्वंतर सत्ताईस चतुर्युगे तहार अंतर। बताया गया है कि वैवस्वत मनु जब आते हैं, सातवें मनु भगवान ब्रह्मा, भगवान ने एक सृष्टि में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, उन ब्रह्मा जी के जो है एक दिन के 12 घंटे के अंदर वो 14 मनु की रचना करते हैं, और उन 14 मनुओं में से हर एक मनु 71 दिव्य युग में जाता है, दिव्य चतुर्युग के अंदर। तो ये चतुर्युग है के अंदर पहला युग सत्ययुग, फिर दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग, इन चार युगों की दिव्य युग बोला जाता है चतुर्युगों को। उसके अंदर जब इस प्रकार से 71 युग बीत जाते हैं तब एक मनु की समाप्ति होती है, इस तरह जब 14 मनु समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, और इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा जी का जीवन प्रक्रिया चलती है 12 घंटे की रात्रि, और भगवान की 365 दिन का एक साल, और 100 साल जब समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक कल्प समाप्त होता है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि सातवें मन्वंतर 27 चतुर्युग तहार अंतर, जब 27 चतुर्युग बीत जाते हैं तब वैवस्वत मनु के काल के अंदर भगवान 28वें जब शुरू होता है तब द्वापर के अंत में आते हैं भगवान सुवर्ण। अष्टाईश चतुर्युगे द्वापर शेष ब्रजेर सहित है कृष्ण प्रवेश, भगवान कृष्ण का प्रकाश होगा, प्रवेश होगा तब जब 28वां द्वापर चलेगा। वर्णन है सारी चीजें, ऐसा नहीं है कुछ लोग बोलते मनोधारणा से, भैया जिसकी जैसी सोच, कोई साई बाबा को पूजो, कोई देवी को पूजो, सबकी अपनी अपनी दृष्टि, नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका वर्णन अनगिनत शास्त्रों में, पद्म पुराण में पढ़े चाहे आप स्कंद पुराण में पढ़े, सभी जगह इसका वर्णन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 28 दिव्य युग के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं। इससे पहले 7 जो है मनु ऑलरेडी जा चुके हैं, पहले मनु जो थे उनका नाम था स्वयंभू मनु, जिन्होंने सृष्टि की रचना करनी प्रारंभ करी। उसके बाद आते हैं सौरचिष मनु, सौरचिष मनु के बाद उत्तम मनु आते हैं, फिर तामस, उसके बाद रैवत, फिर चाक्षुष, और फिर वैवस्वत अभी जो चल रहे हैं, और इस वैवस्वत मनु के 71 चतुर्युग में से 27 जा चुके हैं और 28वां ये चल रहा है, और इस 28 के द्वापर में कृष्ण आए हैं। मतलब सोचिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में इतना सब कुछ होगा, तब एक किसी द्वापर में कृष्ण आएंगे और एक किसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि जो ये 28वां द्वापर है और जो ये 28वां कलयुग है, इस द्वापर में कृष्ण आते हैं और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। देखिए कितने भाग्यशाली हैं हम, उसी 28वें में हम भी आते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है, हम भगवान के कौन है, माम एव अंश जीव लोक जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के तरह पूर्ण नहीं, हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, है ना। तो बताया जाता है कि कलयुग की स्टार्टिंग में कलयुग का प्रथम संध्या आयाम, कलयुग की प्रथम संध्या में कौन आएंगे, भगीरथी तटे रमे भविष्यामी सची सुता, भविष्य में सची माता के पुत्र होंगे जो गंगा के किनारे आएंगे, कलयुग की प्रथम संध्या। तो बताते हैं ये द्वापर जो समाप्त हो रहा है, कलयुग शुरू हो रहा है, ये संध्या का समय है, इवनिंग बोलते हैं इवनिंग टाइम, और इस प्रकार से ये 71 चतुर्युग चलेंगे। तो इसमें सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आ रहे हैं, सिर्फ एक बार, स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इतने भाग्यशाली होकर उन द्वापर की लीलाओं को हम आकर वृंदावन में देख सकते हैं। आने वाले युगों में, आने वाले चतुर्युगों में हो सकता है लोगों को वृंदावन देखने को ना मिले, वैसे तो अभी भी अदृश्य होता जा रहा है भौतिक दृष्टि से, लेकिन दिव्य दृष्टि से अभी प्रकट है। तो जो लोग माया में अपरह ज्ञान है, माया से बंधे हैं, उनको लगता है कृष्ण तो है ही नहीं, मनुष्य के रूप में आते हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो कृष्ण को समझ पाते हैं कि कृष्ण जो थे वो स्वयं भगवान थे, अन्यथा कृष्ण के सामने प्रकट होने के बाद भी दुर्योधन, शिशुपाल है ना, कंस क्या समझ रहे हैं भगवान नहीं है, ये कौन है, एक मनुष्य है जिसको हम अपनी शक्ति से समाप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आज कलयुग में भी लोग कृष्ण को मारना चाहते हैं, मर्डरर्स भगवान को मारना चाहते हैं, है भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। 8% एथिस्ट नास्तिक लोग इस पूरे विश्व में, 8% जो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अभी हम सोचे कि ये श्लोक तो उन लोगों के लिए वर्णन है जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, सच बात है, ये सोचते हैं ना कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनके लिए श्लोक है, वो लोग माया में अपरहत ज्ञानम है। लेकिन देखें तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के अलावा दो रूपों में और प्रकट होते हैं। बता सकते हैं कौन से दो रूप में प्रकट हो रहे हैं भगवान कलयुग में?
हाँ जी, हरि नाम। और सोचना पड़ रहा है भक्तों को भी, किस रूप में भगवान आते हैं, तो हमें प्रेम कहां से डेवलप होगा जब ये नहीं पता भगवान कौन से रूप में है। नाम और भक्त नहीं, नाम और कौन से रूप में आते हैं भगवान, दो। फरीदाबाद के प्रिय भक्तों जागृत हो जाओ, जीव जागो, कौन से रूप में आते हैं भगवान, दो। हाँ जी, भक्त के रूप में, भागवत के रूप में, विग्रह के रूप में, भगवान विग्रह के रूप में और नाम के रूप में आते हैं। बताते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में चेतन महाप्रभु जो हैं आ रहे, साथ में कलयुग में कृष्ण नाम के रूप में अवतार ले रहे हैं। ये नहीं मालूम उनको तो हम नाम के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न करेंगे। और फिर बताते हैं कि प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, तुम कौन हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, ब्रज में रहने वाले नंद के पुत्र हो, कौन हो तुम, विग्रह के रूप में, प्रतिमा नाही तुम्हें, तुम कोई मूर्ति नहीं हो, ये समझना पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि भगवान के पत्थर की पूजा करने वाले ये हिंदू मूर्ख हैं, लेकिन देखा जाए तो हम मूर्ख नहीं है, हम सबसे समझदार हैं। क्यों? क्योंकि हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं। अगर पत्थर की पूजा करते तो इस पूरे फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर से वृंदावन तक हजारों पत्थर रोड पे पड़े हैं। आपने देखा कभी दंडवत करते हैं सारे भक्त रोड के पत्थरों को अगरबत्ती दिया करते हैं, सिर्फ यहीं आकर क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें और उसमें फर्क है। तो एक बार हिंदोली में राधा गोविंद महाराज बता रहे थे अपने प्रवचनों के दौरान कि हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम पत्थर के अंदर भगवान की पूजा करते हैं। जैसा बताया गया कि भागवतों द्वारा, सन्यासियों द्वारा, आचार्यों द्वारा भगवान से विनती की जाती है कि भगवान आपका जैसा आकार है, वेनुम क्वांतम अरविंद दालकाक्षम, हाथ में बांसुरी है, कमल जैसे नयन है, आपका हमने एक घर बनाया है, ये मूर्ति आप इसमें प्रवेश करिए। और फिर जो हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम उस पत्थर की नहीं, उसके अंदर जो भगवान है उसकी कर रहे हैं। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये जब मालूम ही नहीं है तो फिर भक्ति कहां से करेंगे। हम तो सोच रहे मूर्ति है, 5 मिनट मूर्ति के आगे अगरबत्ती घुमाई और उसके बाद फिर 24 घंटे हमारे है कि नहीं। या फिर हरि नाम लिया तो हरि नाम लेते वक्त क्या करते हैं, भगवान का नाम जप करते वक्त वैसे मन नहीं लगता, आधे से ज्यादा भक्ति यही बोलते हैं प्रभु जी मन ही नहीं लगता हमारा माला करने में, मन ही नहीं करता माला करने में। और जब माला करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, और ऐसा मन है क्योंकि पता ही नहीं कि ये कृष्ण है स्वयं, इसी के कारण अज्ञानता के कारण हमको ऐसा लगता है कि भगवान कभी आएंगे, ऐसे चक्र आएगा, म्यूजिक बजेगा, भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान तो प्रकट है नाम के रूप में, प्रतिमा के रूप में, लेकिन हम जो है माया में अपहृत ज्ञानम, ये हमारे लिए श्लोक है। और हम क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं, श्री राधा गोविंद भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौर निताय की, पदे पावन श्रील प्रभुपाद की। और प्रभुपाद अपने पर्पट्स में लिखते हैं कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के साथ भगवान के धाम चले जाते हैं। हम भी बोलते हैं ना द्वातिस अक्षरम मंत्रम, बोलते हैं ना द्वातिस अक्षरम मंत्रम, जो 32 अक्षरों का मंत्र है, षोडश नाम कान्वतम, 32 अक्षरों का मंत्र है और 16 नाम उसके अंदर, 16 नाम है। कौन सा मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बताया गया पद्म पुराण में द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कांगतम प्रजपन वैष्णवम नित्यम, वैष्णवों के नियमों के अनुसार अगर उसे जपा जाए, राधा कृष्णम स्थलम लगे, उस व्यक्ति को राधा कृष्ण का स्थल गोलोक धाम प्राप्त होता है। तो आप अगर गोलोक धाम जाना चाहते हैं तो पहले ये मानना पड़ेगा कि विग्रह के रूप में साक्षात भगवान है और नाम के रूप में भगवान है। देखिए जब द्वापर युग में साक्षात भगवान प्रकट लीला करते हैं, अभी तो भगवान अप्रकट लीला कर रहे हैं, लीला तो कर रहे हैं अप्रकट है, तो जब प्रकट लीला करते हैं तब भी दुर्योधन उनको भगवान नहीं मानते हैं, विदुर उनको भगवान मानते हैं, पांडव उनको भगवान मानते हैं। और इसी के कारण श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय, पहले स्कंध के 15वें अध्याय में बताया गया है, तत ध्यानम उनित्य भक्त्या विशुद्ध धीषणम परे तस्मिन नारायणम पदे एकांत मृत्योर गतिम, मरने के बाद अपना समय समाप्त करने के बाद पांडवाज अपने स्वशरीर, अपने शरीर के साथ गोलोक भ्रमण नारायणम पदे,
मतलब लोटस फीट ऑफ
नारायण, भगवान के कमल चरण को प्राप्त करते हैं। सो शरीर, शरीर के साथ है कोई ऐसी साइंस जो शरीर के साथ भेज दे? मून पर भेजते हैं तो एंटार्क्टिका में उतर जाते हैं, बोलते हैं नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन मून, बाद में पता चला एंटार्क्टिका पे उतरे थे। तो इस प्रकार से हम स्वशरीर क्या गोलोक धाम जाएंगे जब हमें नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है। पांडवास को श्रद्धा थी कि भगवान कृष्ण है, इसीलिए तस्मिन नारायणम पदे, और उनको क्या प्राप्त हुआ? नारायण पद प्राप्त हुए। क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी शुद्ध चेतना नहीं है, इसी के कारण हम कृष्ण को समझ नहीं पाते कि वो साक्षात भगवान के रूप में है ना। और अनगिनत तरह के उल्टे कार्य करते हैं दोनों चीजों के साथ में, जब जब करेंगे तब भी और जब मंदिर में होंगे तब भी। मंदिर में होंगे तो हमारी गप्पे खत्म नहीं होते हैं, है ना, मूर्ति के सामने, भगवान के सामने, साक्षात हम भगवान के सामने खड़े हैं, समझेंगे ये तो मूर्ति है, ये थोड़ी बोलती है, ये थोड़ी चलती है, और उसके सामने अनगिनत प्रजल्पा करते हैं भक्त लोग मंदिर के प्रांगण के अंदर, है ना। और जब नाम लेते हैं तो भी मोबाइल है और भी आजकल फेसबुक है, ऑफिस में बैठ के जप करते हैं, कार में बैठ के जप करते हैं, व्हाट्सएप के साथ जप करते हैं, व्हाट्सएप भगवान भी पूछेंगे, व्हाट्सएप डूड ये क्या कर रहे हो तुम, है ये जप है तुम्हारा, दिस इज गप नॉट जप, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे करेंगे तो हम लगे पड़े हैं उन्हीं सारी चीजों में, भगवान को श्रद्धापूर्ण नहीं भजन कर रहे हैं। आप देखिए कि पांडवाल जो है स्वशरीर जाते हैं और द्रौपदी भी जाती है, लेकिन विदुर जो है वो नहीं जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि विदुर कहां चले गए अपना शरीर समाप्त करने के बाद, स्वशरीर वो कहां गए? गए वो भी स्वशरीर है क्योंकि वो भगवान के भक्त है, तो कहां गए? तो बताया गया है कि विदुर जो है वो अपने लोक, कौन सा लोक है विदुर का, बता सकता है कोई? यमलोक, पितृलोक, यमलोक पितृलोक है, पितृलोक के राजा है यमराज, और उस यमराज का अंश है कौन? विदुर। जो विदुर यहाँ पर आते हैं महाभारत में भगवान के भक्त की लीला करने के लिए, तो पांडवास को जा रहे हैं गोलोक धाम, द्रौपदी सुभद्रा सब लोग जा रहे हैं गोलोक धाम, लेकिन विदुर जो है वो जाते हैं पितृलोक में अपनी सेवाओं में। आप देखिए कैसी सेवा दी है भगवान ने उनको, ऐसी सेवा है कि सबका जो है ना वो जज करना है आप सही या गलत। जैसे टेम्पल अथॉरिटी होती है ना, उनके पास बड़ी टेंशन होती है, एक भक्त बोल रहा है प्रभु जी ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, दूसरा भी कह रहा है प्रभु जी वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो टेम्पल अथॉरिटी के लिए बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि कौन सही कौन गलत, और जिसकी तरफ डिसीजन ले तो दूसरे के प्रति तो गलती करी करी, क्योंकि उसे लगेगा मैं तो सही था। इसी प्रकार से यमराज की सेवा बड़ी खतरनाक सेवा है। सोचिए भक्ति की प्रकाष्ठा, मतलब खूब जप किया, खूब जप किया तो सेवा क्या मिली? यमराज बना दिया, आपको बना दे खुश हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अटेंशन लगा रखा है ये कि हम जब भक्ति कर रहे हैं उसका कुछ प्राप्ति चाहिए क्या? गोलोक धाम में भगवान का कीर्तन सुनू, भगवान का फल खाऊं, भगवान के चरण दबाऊं। भगवान ने गाय बना दिया तो फिर सारा दिन है तैयार माला करने के लिए, आधे लोग छोड़ देंगे माला, अरे प्रभु जी गाय बनने के लिए इतनी माला करेंगे क्या? सोचिए भगवान से प्रेम होगा, भगवान की लीलाओं से प्रेम होगा तब जाकर हमें भगवान प्राप्त होगा। विदुर जो है वो यमराज की सेवा प्राप्त कर रही है। विदुर जो थे अपने पूर्व जन्म में जब यमराज एक ऋषि हुए हैं, उनकी कथा आती है मुंडुक ऋषि। मुंडुक ऋषि जो थे वो बहुत जप किया करते थे, भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, और उनके जो राज्य था उसके अंदर एक राजा के यहाँ चोरी हो गई। किस चीज की चोरी हुई? गेहूं अन्न आदि की चोरी हो गई, और चोरों ने क्या किया, ले जाकर जो ऋषि थे मुंडुक ऋषि के आश्रम में जाकर छुपा दिया, और छुपाने के बाद में राजाओं ने ढूंढ, राजा के जो सिपाही हैं उन्होंने ढूंढना प्रयास किया, ढूंढा कहाँ गए, जब ढूंढा तो पता चला कि मुंडुक ऋषि के आश्रम में कुछ चोर सोए हुए हैं, और अन्न भी प्राप्त हुआ, चोर भी बेचारे चोरी करके सो गए थे आराम से, जैसे हम भी सो जाते हैं ना भक्ति में जप करते वक्त, ऐसे वो भी आराम से सो रहे थे, सबसे अच्छी नींद तभी आती है या भागवत क्लास में या फिर जप के समय, तो वो भी सो रहे थे आराम से चोरी करके। और फिर क्या हुआ कि उनको राजा के सिपाहियों ने जब चोरों को प्राप्त किया तो सोचा कि ये जो बाबा जी बैठा हुआ है ना बाहर, ये ही है फेक बोगस गुरु, इसी के चोर है, इसी ने भेजा होगा अन्न के लिए, भिक्षा नहीं मिल रही होगी तो सोचा चोरी करवा ले, तो इसको पकड़ लो उठा लो। तो वो आंखें बंद करके ध्यान में थे भगवान नारायण के, और उठा लिया, उठा के राजा के पास ले गए, बोले राजा इन्होंने चोरी करी है, इन्होंने चोरों का साथ दिया है और अन्न की चोरी करी है राज दरबार से, तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या मिलेगी सजा? फांसी लगा दो।
तो फांसी पर चढ़ाया गया, और फांसी पर लगाने के बाद पहले जमाने में फांसी ऐसे नहीं होती थी रस्सी वाली, नीचे एक सुई रखते थे और ऊपर से छोड़ते थे तो वो सुई ऐसे करके घुस जाती थी। तो इस प्रकार से वो सुई उनको घुसनी थी लकड़ी की, ऐसे करके तीर जैसा बनाते थे ऐसे घुस जाएगा। तो वो जब लगाया गया छोड़ा गया तो वो डायरेक्शन रॉन्ग हो गया, ऐसे करके निकल गया लक ना, भक्ति करी हुई थी पहले। तो उनको जब ले लिया, जब बच गए वो, तो उन्होंने फिर बेइज्जती तो हुई गई कि इतना बड़ा सन्यासी चोर के रूप में पकड़ा गया है ना। तो फिर जब वो गए वापस तो उन्होंने यमराज को याद किया और बोले, ये क्या डिसीजन तुमने दिया। मंडूक ऋषि बोल रहे हैं, ये क्या मेरे साथ कर्मों का लेखा जोखा तुम देखते हो ना, तुम्हारी सेवा है ना, ऐसे भक्त भी आ जाते हैं, प्रभु जी आपकी सेवा है, ये आपकी सेवा है, ये क्या कर रहे हो आप, प्रसादम कैसे हो रहा है, प्रभु जी आपकी सेवा है, हम ऐसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने वैसे बोला कि कैसे सेवा है, ये क्या किया मुझे आपने, इतने बड़े सन्यासी, मेरे पिछले जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, किस कारण से इस पाप का भुगतान मुझे भरना पड़ा। तो बोले कि देखो, आज से तकरीबन 80 जन्म पहले आप क्या कर रहे थे, एक जगह 5 वर्ष के बालक थे और आपके पेड़ वृक्ष के नीचे, घर के सामने एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे कुछ चींटियां थी, चींटी बड़ी बड़ी चींटी होती है, तो वो आप पेड़ की लकड़ी लेके उसके पीछे दबाते थे, वो पेड़ की चींटी ऐसे ऐसे करती थी नीचे 2 हाथ आगे के उठाकर, और फिर आप उसे छोड़ देते, फिर ताली बजाते थे, देखा मैंने इसको दबा दिया। तो वो जो 5 वर्ष की उम्र में आपने अपराध किए उनका भुगतान आपको भरना पड़ा कि आपके यहाँ फांसी लगी लेकिन आप मारते नहीं थे इसलिए आप मरे नहीं। तो उन्होंने कहा, ये क्या नियम है, आप जानते हो शास्त्रों का नियम क्या है। उन्होंने क्या नियम है, 5 वर्ष से कम उम्र में किए गए पाप स्वप्न के रूप में आते हैं, ये क्या किया आपने कि जो कि साक्षात मुझे इस पाप का भुगतान भरना पड़ा। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं क्या कि आपको पृथ्वी लोक पर जाना पड़े और एक दासी पुत्र बनना पड़े। तब यमराज विदुर बनकर आते हैं और फिर अपनी लीला समाप्त करके भक्ति करके वापस यमराज की सेवा, यमराज रूप की सेवा में चले जाते हैं। तो देखिए, समझने की बात यह है कि हमें भगवान की जो भक्ति है वो प्रेम पूर्वक करनी है। कैसे करनी है, प्रेम पूर्वक। 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं डर के कारण, है ना, करते हैं कि नहीं, नाम जप नहीं करोगे तो नर्क जाना पड़ेगा, प्रभु जी हमारा तो नर्क पक्का है, नर्क जाना पड़ेगा, नर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कुछ लोग करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के कारण, नाम जप कर लो तो क्या होगा, आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होगी, प्रभु जी ये सब यही है, इसकी कृपा है नाम जप की, ये जो घर बंगला गाड़ी है। ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति के पास अगर जप करने से धन की प्राप्ति बढ़ने लगे तो वो भगवान की कपट कृपा होती है। निष्कपट कृपा है जब भगवान से प्रेम जागृत होगा। क्या हमारे जीवन में प्रेम है भगवान से? अगर प्रेम होगा तो नाम लेते वक्त नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब धन गिनते हैं तो नींद आती है नहीं आती है, क्यों, क्योंकि धन के प्रति हमें लक्ष्मी के प्रति प्रेम है पर नारायण के प्रति कोई प्रेम नहीं। तो ये प्रेम नहीं है हमारे अंदर, हम करते हैं या तो डर के कारण या फिर इच्छाओं की पूर्ति के कारण, या फिर कुछ लोग जो भक्ति में आ जाते हैं स्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं भाग्यशाली व्यक्ति, वो करते हैं ड्यूटी के कारण, ये हमारा नियम है, गुरु महाराज की सेवा है, 16 माला करनी है, आंखें ऐसे करते हुए खोल के हरे कृष्णा। तो ये नियम के कारण ड्यूटी के कारण कर रहे हैं, लेकिन 4th प्रकार का भक्त जो बताया गया है प्रेम के कारण, वो कोई भी नहीं कर रहा है। अगर वो करेगा तो उसके जीवन में जो है हो सकता है कितनी भी बाधाएं आए लेकिन वो भक्ति को छोड़ेगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं प्राय भागवतम क्लासेस के अंदर या फिर टेम्पल की सेवाओं के अंदर वो बोलते हैं आप कृपा करके टेम्पल की सेवाओं में भाग लें, लेकिन जो ज्यादातर लोग भाग जाते हैं वो सोचते हैं, मतलब कह रहे हैं टेम्पल की सेवाओं से भाग लें और घर भाग जाते हैं, वो कह रहे होते हैं भाग लें आप हमारे साथ जुड़िए, और वो सोचते हैं अच्छा भागिए भाग लें, भाग जाते हैं। हमारा प्रयास तभी हो पाएगा, हम भाग तभी ले पाएंगे जब हम चाहे भगवान से प्रेम करेंगे। शिव जी को देखिए, शिव जी ने इतनी भक्ति करी, बताते हैं वैष्णवानाम यथाम शंभु, और उनको क्या सेवा दी भगवान ने, ठीक है भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा ठीक है शिव जी मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या करो, सेवा क्या है मेरे लिए, सेवा है कि आपको जहर पीना है, तैयार है आप लोग, माला इतने ध्यान से करें भगवान प्रकट हो जाए, बोले जहर पियो, पी लेंगे, अरे भगवान इसके लिए थोड़ी कलाकंद खिलाओ, अरे मिठाई खिलाओ, ये क्या आपने जहर वहर की बातें करने लग गए। तो भगवान शिव जो जहर पी रहे हैं और जो है पार्वती टेंशन में रहते हैं, कैसे जहर पियेंगे आप, क्या होगा कैसे, आप तो मर जाएंगे, आप तो एक आप भगवान थोड़ी है। तो जो है वो भगवान का नाम जो है, भगवान कहते हैं कि देखो तुम अगर मेरी सेवा करोगे तो तुम्हारा नाम भी यशस्वी हो जाएगा, आज सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी को जानते हैं। क्यों? उन्होंने घर बंगला बनवाया अपना, क्या किया, घर का त्याग किया, भोग नहीं किया। हम सब लोग चाहे भक्ति करें चाहे भौतिक हो, भोग के पीछे हम चल रहे हैं, लेकिन हम त्याग में नहीं जाते। हम सोचते त्याग देंगे तो फिर घर परिवार कौन चलाएगा। त्याग कम से कम शरीर का, परिवार का नहीं कर सकते, भावना का त्याग तो कर सकते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये कम से कम सोचना तो शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट ऑफ थिंकिंग, सोचें कि हाँ हमें ये सब कुछ छोड़ना है, तो एक दिन छूट जाएगा। तो शिव जी ने भी इसी प्रकार से त्याग दिखाया कि मुझे नहीं चाहिए कोई नाम, नहीं चाहिए ये जीवन, समाप्त हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में लग जाए जैसे भी तैसे। और फिर देखिए आज जो है शिव जी किस नाम से जाने जाते हैं, नीलकंठ महादेव। उनका कंठ नीला पड़ गया लेकिन उनको कुछ हानि नहीं हुई। लेकिन क्या हम तैयार हैं इस तरह की सेवा करने के लिए? टेंशन हो जाती है सर्दी के टाइम में, कोई बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, रोजे ठंड पड़ रही है, 104 बुखार है, कैसे जाते हैं? भागवतम में कैसे आते हैं? रोजे हमारे घर रिश्तेदार आए हुए थे, शादी थी, तो लोग प्रवचन देने की सेवा भी छोड़ देते हैं। तो प्रवचन देने का सेवा का टाइम आता है, बोले प्रभु जी आज आपका प्रवचन है, तो प्रभु बोलते हैं भक्त की नहीं प्रभु जी, हम तो आज सेवा में बिजी हैं, हमारे साथ कोई और कार्य था, आज हमें यहाँ का जाना था। अब देखिए भगवान की कितनी महान कृपा है कि हमको सेवा मिलती है, चाहे ये सेवा है बोलने की, चाहे श्रवण करने की, दोनों सेवाएं समान है। ये नहीं जो सब प्रवचन दे रहा है वो व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा प्रगतिशील भक्त है और जो सुन रहा है वो बहुत निम्न कोटि का है, नहीं, दोनों समान है, एक सुन रहा है एक बोल रहा है। यही तो करते थे संत। भक्त क्या करते हैं, चार कुमार क्या करते हैं, एक कथा बोलते हैं और तीन सुनते हैं, और फिर एक बोलते हैं तीन सुनते हैं। तो एक बार उन चारों कुमारों ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, जब प्रणाम नहीं किया तो लक्ष्मी जी नाराज होकर क्या उनको श्राप दे दिए, उनको श्राप दे दिए कि जाओ तुम क्या बन जाओ, हाँ पार्वती जी श्राप दे दी क्योंकि शिव जी को प्रणाम नहीं किया। बोले देखो छोटे छोटे भाई हैं तुम्हारे क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और देखो तुम्हें प्रणाम नहीं करते, जाओ ऊंट बन जाओ, ऊंट की तरह बैठे हो, प्रणाम भी नहीं करते, गर्दन ऐसे करके बैठे हो। हम भी तो ऐसे करते हैं ना, वैष्णव सामने से चले जाते हैं, दंडवत ही नहीं करते भक्त, और कह रहे कमर में दर्द है प्रभु जी क्या करेंगे दंडवत, वैष्णव में हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, वैसे हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हर वैष्णव को देखते ही चाहे वो नया हो पुराना हो हमको उसको प्रेम प्रकट करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब गए अंग्रेज, तो अंग्रेज वैष्णव थोड़ी थे, अंग्रेज जब आते थे उनकी भक्ति प्रवचन सुनने के लिए प्रभुपाद उनको प्रवचन देते थे और उसके बाद उनको प्रसाद बना के खिलाते थे, और खाने के बाद जो झूठी प्लेटें होती थी खुद धोते थे, और धोने के बाद में क्या करते थे उनको सजा के रखते थे और दूसरे दिन के प्रवचन के लिए तैयारी करते थे, भोग की तैयारी करते थे। आप सोचिए जरा हम इतना सब करने को तैयार है, नहीं है हम तैयार। श्रील प्रभुपाद जब रोज 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 बर्तन मांज रहे हैं, उनको भोग प्रसाद खिला रहे हैं, तो भक्त इतने ज्यादा उनको अंदर ह्यूमिलिटी गिल्टी फील होने लगा, जबकि वो भक्त नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, जप नहीं करते थे। एक दिन वो बोले कि प्रभुपाद इतने दिनों पर हम देखते हैं कि आप रोज भोग बनाते हैं, रोज कथा सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद हमारी झूठी प्लेटें धोते हैं, क्या हम धो सकते हैं? प्रभुपाद बोले आई एम वेटिंग फॉर दिस डे, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब आप सेवा मांगो जाओ और सेवा में लग जाओ। देखिए आप, और वो जो चार कुमार थे उन लोगों को क्या दिया कि ऊंट बन जाओ। जब ऊंट बन गए तो भगवान शिव के पास पार्वती आई और बोली देखो वो चार भाई है ना तुम्हारे छोटे चतुर कुमार, मैंने उनको श्राप दिया कि ऊंट बन जाओ, अब वो ऊंट बन गए। तो शिव जी बोले क्या किया, वो छोटे नहीं है बड़े भाई है मेरे, वो सबसे पहले भगवान ने प्रकट किए ब्रह्मा जी ने मेरे पिताजी ने, और वो चारों के चारों भाई जो हैं वो उन लोगों को बोला सृष्टि की रचना करो, उन्होंने मना कर दिया कि हम ब्रह्मचारी जीवन का पालन करेंगे, सदा कोमल अवस्था में रहेंगे, 5 वर्ष की आयु से कभी बड़े नहीं होंगे। तो आपने उनको ऊंट मेरे बड़े भाई को श्राप दे दिया, आपके जेठ लगते हैं, आपने क्या कर दिया ये मेरे भाइयों के साथ। ओ गिल्टी हो गई मारवती, अच्छा रोने लग गई, चलो चलो वो माफी मांगते जाते हैं वहां पर। जब वहां पहुंचे तो चारों ऊंट बन के बैठे थे, क्या कर रहे थे, एक ऊंट कथा कर रहा था, 3 ऊंट सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला, पार्वती ने पूछा अरे मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, मैंने आपको ऊंट का श्राप दे दिया ऊंट बनने का, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो वो बोले कि नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, हम तो बड़े खुश हैं माता, आपने ये शरीर हमको प्रदान किया, मनुष्य शरीर में नहाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, खाना खाना, कथा सुनने का टाइम वेस्ट होता है, इसमें तो कथा सुनने का आनंद ही अलग है, ना नहाने की टेंशन, हम ना हमारी पीठ में उसमें पानी भर लेते हैं, आराम से 6 दिन बैठे रहते हैं, एक कथा करता है 3 सुनते हैं। देखिए किसी भी व्यवस्था में भगवान से प्रेम, जैसे श्रील प्रभुपाद को प्रेम है, प्रभुपाद जी जा रहे हैं प्रेम के कारण, 3 बार हार्ट अटैक आ रहा है, 2 बार हार्ट अटैक आ रहा है, जा रहे हैं और वहां पर जाकर प्रचार कर रहे हैं भक्तों को, ये प्रेम के, कोई ड्यूटी मानकर कर रहे हैं, डर के कारण, भक्ति सदान सरस्वती आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भक्त होते हैं ना गुरु महाराज आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सब अपने गुरु से डरते हैं, ऐसा नहीं है, प्रेम के कारण, कृष्ण से प्रेम, गुरु से प्रेम, हमारी लीलाएं, हमारी जो सेवाएं हैं वो अपने आप होने लग जाएंगी और अच्छे बेहतर रूप में होंगे। बताते हैं, प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। प्रेम अंजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, इन आंखों में प्रेम का अंजन लगाना है। काजल लक्ष्मी का नहीं, किसका? प्रेम का। प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमको श्याम सुंदर के दर्शन होने लगे। अन्यथा अगर हम पूरा प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक प्रेम अंजन नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे, ना नाम के रूप में ना विग्रह के रूप में। सदा उनको पत्थर मानते रहेंगे और माला को लकड़ी की माला मानते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बताते हैं जब श्री प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, धन नहीं था प्रभुपाद जी के पास। था, आज भक्त को बोलो प्रचार करने जाओ तो सबसे पहले पूछता है प्रभु जी आने जाने का ऑटो का किराया दे दो। था प्रभुपाद जी के पास, नहीं है। अच्छा, ग्रंथ थे, शास्त्र थे। प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर लिखा भागवतम पूरा, 3 कैंटो लिखे थे, बाकी वहां जाकर लिखे। 86 बुक्स लिखी वो वहां जाकर लिखी, यहां नहीं लिखी थी। प्रभुपाद जी के पास बड़े मंदिर थे, प्रभु जी हम जाएंगे मंदिर ही नहीं कहां बुलाएंगे, छोटा मंदिर फरीदाबाद का कहां बुलाएंगे, मंदिर था नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने किसके कारण लोगों को बदला? जोर से बोलिए। हाँ जी, प्रवचन प्रसाद नहीं, प्रवचन प्रसाद तो हम भी देते हैं, हमारे से क्यों नहीं बदल रहे? हरिनाम तो हम भी लेते हैं। कृष्ण प्रेम, जितना प्रोपोगेशन परसेंटेज में कृष्ण प्रेम होगा उतनी परसेंटेज में लोगों में बदलाव होगा। अगर आप ही को प्रेम नहीं है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याम् पार्थ। हमें कृष्ण से प्रेम ही नहीं है, हमें प्रेम नहीं है तो हम दूसरे को क्या देंगे? भगवत गीता बांटने जाते हैं, ले लीजिए भगवत गीता, ले लीजिए आप तो ले लीजिए। लोग बोलते हैं अरे क्या भैया इतने दुखी हो क्या है इसमें, ऐसा टेंशन वाली चीज लिखी हुई है। कह रहे नहीं टेंशन नहीं है, इसको पढ़ने से जीवन बदल जाता है। अरे आपका तो बदला नहीं, अरे मैं तो भगा दुर्भागी हूं, मेरा नहीं बदला, क्या पता आपका बदल जाए, ले लो, ऐसे लेगा कोई? आग लगी हो किसी जगह पर, भाषा भी नहीं आती हो, फिर भी आपको चिल्ला रहा हो, मतलब बचा लो बचा लो बचा लो, रशियन बोल रहा हो, फिर भी आदमी जाएगा बचा लेगा उसे, क्यों? क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बताते हैं ये प्रसन्न है। चैंट एंड बी हैप्पी, सब जप रहे, सुबह के समय सबका चेहरा देखना चाहिए, मंगला आरती के बाद जब जप होता है, इतने दुखी है, चैंट एंड बी हैप्पी, वेयर इज द हैप्पीनेस? वो नहीं है क्योंकि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं भगवान पे, है ना? और वो प्रेम क्यों जागृत नहीं हो रहा, उसके लिए भागवतम में आता है, सुश्र अश्रद्धा नास्ते वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में रुचि नहीं है, भागवतम कहता है, हमने कैसे? भागवतम कहता है शुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथा में रुचि होगी तो कृष्ण प्रेम जागृत होगा। ये सीढ़ी है, आप कहेंगे कैसे प्रकट हो जाए कृष्ण प्रेम, हम तो प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए वासुदेव की कथा के प्रति। अगर कथा के प्रति रुचि जागृत हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें प्रकट होने लगेंगी, हरि नाम में मन भी लगेगा, प्रतिमा के रूप में कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे लॉस एंजल्स में 1973 के प्रवचनों के द्वारा कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक वो निकाला करते थे न्यूज़पेपर, उसका नाम था नदिया प्रकाश। क्या नाम था? ये चेक कर रहा हूं, सो तो नहीं रहे लोग। नदिया प्रकाश, तो नदिया प्रकाश जो था उसके अंदर लिखा करते थे हर रोज भगवान के बारे में चर्चा निकालते थे, ये देखो भगवान ने ये लिखा भगवान ने ये लिखा। तो एक पॉलिटिशियन नेता आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास और बोला आप ये रोज नदिया प्रकाश निकालते हैं इसमें आखिर है क्या, है भगवान के बारे में कितना है? वही माला वही भक्त वही प्रसाद, आधे से ज्यादा लोग यही सोचते हैं क्या, रोज रोज क्लास में जाएंगे वही वही हरिनाम ध्यान से लो वही प्रसाद वही भगवान वही राधा गोविंद, मूर्ति टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती वैसी खड़ी हुई है, क्या वही भक्त वही प्रभु जी मिल जाएंगे ऑरेंज कपड़े में पद्मपुरी प्रभु वही बोलेंगे हरी बोल क्या वही बोरिंग, वी नीड समथिंग रिलिशिंग न्यू समथिंग न्यू। पॉलिटिशियन भी यही बोल रहा था मुझे कुछ नया चाहिए। जब उन्होंने बोला कि नया चाहिए तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वो बोले कि देखो ये जो भौतिक जगत है ये 1/4 है आध्यात्मिक जगत का, मतलब आध्यात्मिक जगत तीन चौथाई है, यहां से तीन गुना बड़ा, और उस तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत का ये जो है खाली एक चौथाई हिस्सा है। उस एक चौथाई हिस्से में आप देखिए असंख्य ब्रह्मांड है, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर असंख्य ग्रह है प्लैनेट, और हर एक प्लैनेट में असंख्य देश है, और उन देशों में असंख्य सिटीज हैं, टाउन्स हैं, और हर एक टाउन में एक एक अखबार तो चलता ही है। तो आप सोचिए कि जब भौतिक जगत के एक चौथा हिस्से में इतना सब कुछ हो सकता है, तो जो तीन गुना आध्यात्मिक जगत है उसमें असंख्य तीन गुने ब्रह्मांड है, असंख्य तीन गुने प्लैनेट्स हैं, असंख्य तीन गुने सिटीज हैं, असंख्य तीन गुने टाउन और विलेजेस हैं, और हर एक जगह हर मिनट कुछ ना कुछ होता ही रहता है आध्यात्मिक। तो इसके लिए हमें, आपको तो खाली यहाँ की आज तक यहाँ की खबर देनी, आज तक हमें कल तक परसों तक सारी खबर देनी होती है ना। तो हम चाहे तो हर मिनट अखबार निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है, हम निकालते क्यों नहीं, क्योंकि वासुदेवम कथा रुचि नहीं है लोगों के अंदर, कृष्ण कथा सुनना पढ़ना इसमें कोई रुचि नहीं है। भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाए तो बस वही भगवान है हमारे को, पहले हम यहाँ थे अब हम वहां पहुंच गए हैं, एक दिन वहां पहुंच जाओगे कहां नरक लोग, लेकिन यहां से वहां का ही सोचते हैं कि वो कोई यहां से यहां पहुंचा दे वही भगवान है। भगवान वो है जो शांति प्रदान करे, हम उनका अंश है। आप देखिए एक मछली जो कि पानी में रहती है ना, रहती है कि नहीं, या जमीन पर रहती है, पानी में रहती है, उस मछली को निकाल कर जमीन पर रखा जाए, बताते हैं कि अगर जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है 75% इज वाटर एंड 25% इज लैंड। देखा ज्योग्राफी में सर्कल में 25% जमीन और 75% पानी है, उसमें से एक मछली को निकाल के धरती पर डाल दिया और उस मछली को दिया भाई आज से तुम जो हो ये हो वाइस प्रेसिडेंट हो, और तुम्हारे पास जो है 5 करोड़ रुपया है, एक बंगला है पेंटा हाउस और एक गाड़ी है, खुश रह पाएगी? क्या चाहिए उसको? पानी, पानी दिया नहीं, सब कुछ दे दिया। ऐसे हमको सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन वो जो तीन चौथाई जगत का आध्यात्मिक पानी है वो हमारे पास नहीं। वो जिस दिन होगा उस दिन मछली संतुष्टि से रह पाए, तो अगर वो ना रह पाए संतुष्टि से और हम चाहें कि वो एक चौथाई जगत में संतुष्टि से रहे, तो हम उस मछली के क्या कर सकते हैं, जीव और दया क्या कर सकते हैं, उस जीव पर दया करके उसके लिए एक्वेरियम बना सकते हैं, मछली ग्रह, मछली ग्रह, उस मछली ग्रह के अंदर उसको पानी और पत्ते लगाकर नकली रूप में उसको एक्वेरियम को देते हैं कि भाई तुम्हारा समुद्र आ गया, टेंशन मत, तुम्हारी नदी आ गई, हम देते हैं। उसी प्रकार से ये जो मंदिर है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हर एक इस्कॉन का मंदिर अपने आप में वैकुंठ लोक है, क्यों, क्योंकि इसका जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल वैसा है जैसा तीन चौथाई जगत का एनवायरमेंट है। अगर हम चाहें कि हम यहाँ ना आए और हमारे घर में ही हम आनंद में रहें तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर रोज अनेक भक्त क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो ध्वनि है ये दिव्य ध्वनि है, इसके उच्चारण मात्र से जिस जगह लिया जाता है वहां पर अगर कोई बाद में भी कोई आए ना 100 साल बाद, तो वो देख सकता है संत कि यहाँ पर वाइब्रेशंस में हरे कृष्ण महामंत्र है। इसीलिए हमारे यहाँ स्कॉन में एक वीक बनाते हैं होली नेम वीक, उसमें जब बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो पूरे ब्रह्मांड में उसकी वाइब्रेशन घूमती है, नहीं खाली मंदिर के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में सारे भक्त मिलकर जब जप करते हैं एक साथ, तो पूरे ब्रह्मांड में उसकी वाइब्रेशन घूमती है। आप सोचिए प्यूरिफाई करने का इस ब्रह्मांड को एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र, और उस मंत्र को हम लकड़ी की माला मानते हैं या फिर ड्यूटी मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। ना हमको नाम के प्रति रुचि है, ना हमको विग्रह के प्रति रुचि है, ना ही हमको कथा के प्रति रुचि है, तो फिर हमें कैसे भक्ति प्राप्त होगी, कैसे प्रेम। बोलते हैं हर रोज सुबह मंगला आरती के बाद कि क्या मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। 10 नाम अपराध के बाद में बोलते हैं कि हम भगवान से क्या चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रगति हो भगवान के चरणों में, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वो लक्ष्य बोलने के बाद में भूल जाते हैं, अगले 15 मिनट बाद कोई पूछे जैसे अभी मैं पूछ रहा था क्या है क्या है, सब कोई हरि नाम प्रसाद, जो अपने अपने लक्ष्य बना रहे थे वही निकलते हैं। कृष्ण प्रेम लक्ष्य है हमारे जीवन का, वो हम भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो है जाना ही नहीं चाहते। ऐसी एक कथा आती है, भक्ति सिद्धार्थ महाराज सुनाते थे अपने प्रवचनों में कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कामनी मोहन, है ना, कलकत्ता की बात है, कामनी मोहन नाम के एक व्यक्ति थे और वो आनंद में रहना चाहते थे। हमें लगता है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं लेकिन वो आनंद नहीं, वो सुख है, सुख और दुख का घेरा है। जब कोई सुख आता है तो पीछे पीछे दुख उसका वेट कर रहा होता है, जैसे रेड लाइट, रेड लाइट पर जाएं तो रेड लाइट हो तो इसका मतलब ग्रीन लाइट वेट कर रही है, और जब ग्रीन लाइट हो तो रेड लाइट वेट कर रही है। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि आज अगर हम सुखी हैं तो दुख आपका इंतजार कर रहा है, और अगर आप में से कोई अभी दुखी है तो मतलब सुख आपका इंतजार कर रहा है। पर इस सुख दुख के घेरे से निकलकर हमें आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अभी 18 अगस्त को एक फेस्टिवल होने वाला है, कौन सा? उसमें क्या गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भगवान के घर कौन हो रहा है? नंद के आनंद, कृष्ण नहीं, ना कृष्ण नहीं, आनंद। आनंद का साक्षात प्रकट है कौन? कृष्ण। तो कृष्ण का जो पूरा शरीर है वो सच आनंद से भरा हुआ है। भगवान के शरीर से एक बूंद भी टपकेगी हम जब हरि नाम लेंगे तो वो आनंद होगा, वो सुख दुख का घेरा नहीं है। तो ऐसे कामनी मोहन जो थे वो इसी नकली सुख दुख के घेरे में थे और सोचते थे मैं आनंद ले रहा हूं। और उनका एक मित्र था, है ना, वो मित्र जैसे हमारे मंदिर के भक्त हैं, प्रचार करने जाता था और बोलता था कि चलो चलो पास में है मायापुर और वहां पर जाकर हम क्या करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे, कृष्ण का दर्शन करेंगे, राधा माधव का दर्शन करेंगे। लेकिन कामनी मोहन जो था वो हर बार टाल लेता था कि देखो अभी मेरे पास समय नहीं है, है ना, हमारे पास समय नहीं है। वैसे लोगों से पूछो क्या कर रहे थे प्रभु जी, फोन पे कहते टाइम पास कर रहा था, टाइम पास कर रहा, या फिर मिल जाएंगे घूमते फिरते, लोग क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता वो टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम उन्हें पास कर रहा है। और फिर एक दिन उनके आगे लिखा जाएगा पास द वे, काल हमको पास कर रहा है, हम काल को पास नहीं कर रहे हैं, हमें काल पास कर रहा है। तो इसी प्रकार से ऐसे ही कर जो है हिरण्यकश्यपु के बारे में भी वर्णन आता है। हिरण्यकश्यपु का मतलब जानते हैं क्या होकर? हिरण्य मतलब सोना और कश्यपु मतलब कंफर्ट, सॉफ्ट बेड। तो कोई व्यक्ति अगर सोने के प्रति आकर्षित है, ये वाला सोना नहीं, ये तो सोते हैं, गोल्ड वाला सोना, सोने के प्रति आकर्षित है और कंफर्ट, लाइफ कंफर्टेबल हो, मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो, तो कश्यपु है कंफर्टेबल लाइफ वाला। और सोना जो चाहता है वो हिरण्य है। तो जो व्यक्ति सोना चाहता है या पैसा चाहता है वो व्यक्ति हिरणा है, और कंफर्ट चाहता है तो कश्यपु है। तो हम में से कितने लोग हैं जो सोना और कंफर्ट चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं। हरी बोल, सारे भक्त हैं, दंडवत प्रणाम। आप नहीं चाहते हैं। तो जो लोग चाहते हैं, आप लोग तो नहीं चाहते, आप तो भक्त हैं, मैं चाहता हूं जैसे, तो ये जैसे मेरे जैसे जीव हिरण्यकश्यपु हैं, है ना, क्योंकि हमें को क्या चाहिए, पैसा पैसा पैसा, माय मनी, सिर्फ पैसा चाहिए और कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। प्रॉब्लम यात्रा में भी जाते ना, पूछते पूछे एसी में या नॉन एसी में, बस एसी या नॉन एसी, चप्पल पहन के चले बिना चप्पल, अरे क्या भैया, भगवान की सेवा में लगे रहो, कैसे भी करके कांटे भी लगे तो फिर समझना चाहिए भगवान की अहत की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। लेकिन है क्या हम तैयार? जब का फल भगवान, ये कांटे, इतना जब किया कांटे, लाइफ में कांटे, प्रॉब्लम। भक्त बोलते प्रभु जी एक साल से जब करे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ये कोई जब होता है, ये कोई भगवान होते हैं? अरे भगवान टेस्ट लेते हैं तुम्हारा कि तुम कितने प्रगतिशील हो, कितने स्ट्रांग हो अपनी भक्ति में, और हर टेस्ट में फेल हो जाते हो, फिर भगवान निकाल लेते हैं प्रॉब्लम, कहना आप ठीक है, भैया आप ठीक है। तो ऐसा नहीं, भक्ति का मतलब कष्ट भी आए तो हमारा प्रेम भगवान से रहना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा, जैसे कामनी मोहन को नहीं हो रहा था, साधु आते थे बार बार कहते चलो मायापुर धाम दर्शन करेंगे, लेकिन कामनी मोहन हर बार टाल देते थे। एक बार उनके जो भक्त थे, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, जैसे हमारे पदमपुरी प्रभु हैं, किसी ना किसी बहाने से प्रसाद लेके पहुंच जाते हैं भक्ति में, ऐसे वो भी पहुंच गए और बोले कि हम चल रहे पुलिया ग्राम में, एक मेला होने वाला है और उस मेले में जाएंगे, मेला देखेंगे, दर्शन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे बढ़िया से। तो कामनी मोहन क्योंकि आकर्षक था भौतिक के प्रति तो वो चला गया। जैसे यहाँ पर भी जाते हैं ना हमारे सुशांत प्रभु, कहाँ पर जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्राउन इंटीरियर प्लाजा, तो वहां पर लोग आते हैं घूमने फिरने और गलती से उन्हें वहां भगवत गीता मिल जाती है। ऐसे ही वो पुलिया ग्राम घूमने गया था और घूमने जब ले गए तो वहां पर खूब उसने झूले देखे, आइसक्रीम खाए, जैसे लोग मॉल में घूमते फिरते हैं, पिक्चर देखी, सब कुछ किया। और उसके बाद में उसने जो भक्त था उसने बोला, देखो कामनी मोहन सामने मायापुर, श्रीधाम मायापुर, ऐसे करके उसने बड़े भाव में बोला, कह रहा क्या मायापुर, मैं नहीं जाऊंगा माया, मैं नहीं जाना चाहता ये माया के घेरे में, मैं यही ठीक हूँ। कह रहा नहीं बस ये नदी, बोटिंग करेंगे, किसी भी तरह से ले जाऊं भक्त को, बोटिंग करेंगे, है ना। ऐसे हमारे इस्कॉन मंदिर को लोग बोलते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, गरीबों की क्यों नहीं मदद करते, तो वो ये नहीं सोचते कि ये मंदिर उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं। गोविंदा में प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, कृष्ण से आकर्षित नहीं होते तो चलो दर्शन भी कर लेंगे, बोलते प्रसाद पाने जा रहे हैं तो चलो दर्शन भी, ये नहीं दर्शन करेंगे तो प्रसाद भी पा लेंगे, चलो घूमने जाएंगे, म्यूजियम देखेंगे, फाउंटेन देखेंगे, फोटो खींचेंगे तो दर्शन भी कर लेंगे, ऐसे भी अनगिनत लोग हैं बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वो ले गया उनको कुलिया ग्राम से बोट के लिए, बोट में बिठाने लगा तो बोला देखो मुझे ना वॉमिटिंग आती है, नौजिया, मेरे को ना बहुत उल्टी चक्कर आते हैं जब मैं बोट में जाता हूँ, ये पानी देख के मुझे घबराहट होती है, मुझे फोबिया है पानी का। कह रहे फिर कब जाएंगे हम, कैसे जाएंगे? कह रहे जब ये नदी सूख जाएगी। बख्शीश दंड महाराज बोलते हैं अपनी कथाओं में, तब जाएगा जब नदी सूख जाएगी, उसका जीवन सूख जाएगा, उसके शरीर का पानी सूख जाएगा, लेकिन वो मंदिर नहीं जाएगा। ऐसे ही वासुदेव में कथा रुचि ना होने के कारण व्यक्ति अनगिनत बहाने बनाता है कथा में ना जाने के, मंदिर ना जाने के, सेवा में ना जाने। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम बहाने ना बनाएं। क्या करें, हाँ ठीक है भाई किसी की नेचुरल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन एक भक्त थे, हमने बुलाया सेवा के लिए हमारे द्वारका मंदिर के अंदर, तो वो बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे है ना भाई के जो मतलब साड़ू लगते हैं ना उनकी बहन की बेटे की शादी है, तो हम थोड़ा आ नहीं पाएंगे सेवा में। अरे ओ इतना लंबा रस, अरे डायरेक्ट भी हो तो छोड़ो ना, पहले सेवा करो बाद में शादी में चले जाना, क्या दिक्कत है? शादी शाम को होती है सुबह होती है, लेकिन नहीं सुबह से तैयारी करेंगे, छुट्टी चाहिए उनको, मंदिर नहीं आना, क्योंकि वासुदेव में कथा रुचि नहीं है उन व्यक्ति के अंदर। तो इसी प्रकार से बताया जाता है, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचनों में बोलते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ये जो जीवन की कलिका है मतलब कमल जैसी, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिले न खिले। ये जो हमारा जीवन है क्षणभंगुर है, जैसे होता है ना फूल, कोई फूल होता है छुई मुई का फूल, उसे हाथ लगा दो तो बंद हो जाता है, मर जाता है वो। वैसे ही अगर हमारा जीवन इतना कोमल है, जीवन कमल दल जीवन टलमल, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कब ये बूंद गिर जाएगी मृत्यु आ जाएगी हमें मालूम नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिले ना खिले, कल ये जीवन होगा कि नहीं होगा, तभी तो आज कथा सुन लो हरिनाम ले लो, है ना। बोलते हैं प्रभुपाद भी अपने प्रवचनों में इस प्रकार से जप करें कि आज का जप आखिरी जप है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो कैसे करेंगे, कितना ध्यान लगा के करेंगे, हमारा ध्यान इसलिए नहीं लगता, सोचते हैं क्या क्या कहते हैं पता है भक्त, बोलते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे जल्दी जल्दी क्या करना जब अभी तो जीना बरसों, है ना। हरे कृष्ण, इसीलिए बोल रहे धीरे धीरे क्योंकि अभी तो बरसों जीने की उम्मीद लिए बैठे हैं, पता थोड़ी कि कल वो मृत्यु आएगी। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिले ना खिले, मलियाचल की ये मंद समीर, मलियाचल की ये मंद लहर सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग का जो काल है ये कुलाड़ा लेके घूम रहा है पीछे पीछे, मार देगा किसी भी टाइम। प्रभुपाद बोलते हैं ना अभी बोलते हैं कांड कांड कांड, फिर चैंट तो करते नहीं चैंट चैंट, और फिर बोलते हैं मार देता है कुलाड़ा आके और फिर हम मर जाते हैं। तो हमारे अंदर वो एग्रेशन क्यों नहीं है भक्ति के प्रति, क्यों एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है हमारा, क्योंकि हमें लगता है अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बरसों जीना है, अभी तो शुरुआत ही करिए भक्ति की। अरे आप पहले दिन भी मंदिर में आए हो आज, तो आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है, आज ही ऐसा जप लो कि कल आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आज तैयार है जाने के लिए, बुलाओ वैकुंठ धाम से हम चले जाएंगे, हैं तैयार, आ भी जाएगा तो मना करेंगे प्रभु जी अभी वेट करो अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिले न झिले, इस तन कोमल पर, कोमल तन, महाराज बताते हैं कि इस कोमल तन के ऊपर जो है हम लगाते हैं लोरियल पॉन्ड्स, अनगिनत तरह की क्रीम लगा के इसको तैयार कर रहे हैं, इस पे जब मृत्यु का कुल्हाड़ा पड़ेगा बताते हैं 40,000 बिच्छू इकट्ठे डंक मारते हैं, तैयार है उस डंक को खाने के लिए, नहीं है हम तैयार, इसलिए बोलते हैं तो बोलते हैं करे क्या ऐसा जीव, भद्द जीव करे क्या, रट ले अरे जिव्या कृष्ण का नाम, अंत समय में हिले ना हिले, अंत समय में हिल पाएगी नहीं हिल पाएगी, तो जब मौका मिले जिस पल मौका मिले कृष्ण नाम। बहुत सारे भक्त हैं माला ही नहीं हो पाती उनकी, रात तक 10-12 बज जाते हैं रात के, बोले प्रभु जी अभी तक माला नहीं हुई, एक माला चार माला पांच माला पेंडिंग है, क्यों अभी क्या है, पूरा दिन था और भी काम थे, बच्चों की पढ़ाई थी, स्कूल था, ये था वो था, ये सारी चीजें नहीं रह जाएंगी, आपके साथ सिर्फ एक चीज जाने वाली क्या, हरी नाम, और उस हरी नाम के प्रति इतना आराम, हरी नाम के प्रति पूर्ण आराम। तो बोलते हैं जब तक ये काम हमारे जीवन में है, इच्छाएं हमारे जीवन में है, राम का प्राकट्य नहीं हो सकता, राम का प्राकट्य तब होगा जब काम इच्छाओं का अंत हो जाएगा, इच्छाओं को अंत कर दो, जिस परिस्थिति में भगवान ने पैदा किया है गाड़ी बंगला जो दिया है उसी में संतुष्टि रखो और हरि नाम के प्रति आकर्षण रखो। प्रभुपाद एक कथा बताते थे कि एक बार एक राजा था बगदाद का, है ना, वो राजा का एक दोस्त आने वाला था मिलने के लिए मित्र, तो उसने बोला अपने नौकर से कि भैया एक काम करो जाओ बाजार से सामान ले आओ, जैसे हमारे घर मित्र वगैरह आते हैं तो हम भी अरेंजमेंट करते हैं पूरा कि भाई खाने का सामान कुछ एक्स्ट्रा डिशेज सब बनाते हैं, मित्र आ रहे हैं हमारे घर, तो उन्होंने बोला जाओ नौकर से जाओ ले आओ। तो जब नौकर बाजार में सामान लेने गया कुछ धन लेके, तो वहां पर एक भयानक आदमी प्रकट हो गया जो कि देखने में बिल्कुल डेथ पर्सोनिफाइड मतलब यमदूत जैसा था। और उसने बोला हे तुम यहां, ऐसे करके बोला नौकर से। तो वो घबरा गया देख के, सब पसीने निकल गए उसके। और वो भागा, वहां से भाग रहा था, भागता भागता राजा के पास आया। राजा बोला, बगदाद का जो राजा था, कहां है वो धन सामान, धन दिया था लक्ष्मी दी, तुम कुछ खरीद के लेके नहीं आए, क्या हो गया? बोले रस्ते में एक व्यक्ति मिला, बड़ा भयानक था, वो इतना खतरनाक था। उसने ऐसे चिल्ला के बोला अरे तुम यहां, और मैं ऐसे लगा वो मुझे मार डालेगा, और मैं भागा, अपनी जान बचा के यहां आ गया हूं, राजा मेरी मदद करो। तो राजा तो प्राय होते हैं ना मदद करने वाले, और नौकर के प्रति तो हम कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। तो उसको बोले कि ठीक है एक काम करो, तुम मेरा सबसे तेज भागने वाला घोड़ा उसे लेकर अस्तबल से भाग जाओ। कहां जाओ? समारा गांव में, बगदाद के पास एक गांव है समारा गांव, प्रभुपाद बता रहे हैं, उस गांव में चले जाओ। और उस गांव में जाकर क्या करो, मेरा एक मित्र है उसके पास छुप जाओ, वो जो आदमी है मैं उसको देखता हूं कौन है, मैं देखता हूं। तो वो गया बाजार में राजा, और जाकर इधर ये भाग गया समारा घोड़ा लेकर, उधर राजा बगदाद का पहुंचा बाजार में, और उस खतरनाक व्यक्ति से बोला अरे तुमने मेरे नौकर को डराया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कौन हो तुम? तो वो बोला कि देखिए मैं यमदूत हूं ना, यम लोक से आया हूं, आज जो है आपके नौकर का अंतिम समय है, और आज से अभी से 2 घंटे बाद समारा गांव में उसका अंतिम समय है, आज की जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो समारा गांव में 2 घंटे बाद उसकी मौत होने वाली है। तो मैं ये सोच रहा था कि 2 घंटे बाद उसे समारा में मुझे मारना है, वो अभी बगदाद में क्या कर रहा है? तो मैंने बोला अरे तुम यहां, तो वो भाग गया। अब भाग रहा है अपनी मृत्यु के प्रति भाग रहा है, वो भागता जा रहा है जितनी तेज घोड़ा चला रहा है, वो सोच रहा है मैं बच रहा हूं, बल्कि वो हिंदूत वहीं पहुंचने वाला है। तो देखिए ये जो है ना भगवान की भवितव्यता है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होने वाला है, हम मृत्यु से भाग नहीं सकते। तो इसलिए हमारे पास मृत्यु को वश में करना, ये भौतिक चीजों को वश में करना, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि कैसे भी करके हम बस कृष्ण का नाम उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे कानों में भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। रुचि क्यों नहीं उत्पन्न होती? क्योंकि बताते हैं कि रुचि उत्पन्न होने के लिए हमें भगवान के नाम की महिमा को जानना पड़ेगा। आज हम बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों या फिर फीफा के कलाकारों या फिर क्रिकेटर से प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में अनगिनत बार अखबारों में ग्रंथों में पढ़ा है। उनके ग्रंथ होते हैं ना टाइम्स ऑफ इंडिया और डेली टाइम्स, वीक टाइम्स, रीडर डाइजेस्ट, उसमें अनगिनत उनके भौतिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में उनके शास्त्र है ना, ये बोलते हैं हमारे शास्त्र, देखिए इसमें लिखा है ऐसा। तो उनको वो लोग पढ़ते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, तो फिर हमको कैसे उन लोगों से प्रेम हो जाता है भौतिकता से? कृष्ण से प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ना नहीं चाहते, बार बार यही सोचते हैं यही तो लिखा होगा, वही कृष्ण, फिर वही जन्माष्टमी आ गई, वही नंद बाबा का घर, वही गोकुल, वही वृंदावन, वही राधा रानी, कुछ तो चेंज लाओ, कुछ तो चेंज लाओ। तो देखिए ये हम चेंज क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अभी जानते नहीं कि कृष्ण क्या है, कौन है, कौन है ये वासुदेव? लोग उनको जैसे बोल रहे हैं ना माया में अपहृत ज्ञानम, कि ये तो पाप के कारण मारे जा रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम क्यों नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे अंदर एक छोटी सी चीज है, क्या है? अहंकार, फॉल्स ईगो। बताते हैं कि जब हनुमान जी सीता जी का संदेश लेकर, राम जी का संदेश लेकर सीता जी मैया के पास जा रहे थे, तो रस्ते में लंका के बाहर एक राक्षसनी खड़ी थी, क्या नाम था उसका? लंकिनी। असुरों को सब जानते हैं भगवान को। तो क्या है कि उसका नाम था लंकिनी, और वो जो लंकिनी थी उसने क्या बोला, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी वानर, तुम्हें मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, मैं रावण के इस लंका की देखभाल करती हूँ। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया, मैं राम की सेवा करने आया हूं तो मुझे जाने नहीं दे रही हो? तो उन्होंने बोलते ना तू मेरे उल्टे हाथ के काफी, एक ही हाथ में खत्म कर दूंगा। तो हनुमान जी ने उल्टे हाथ मुष्टिक प्रहार किया, उल्टे हाथ से जब मारा तो भगवान ने जब उल्टे हाथ से उनको मारा है तो वो वहां पर गिर गए, कौन? लंकिनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एक बार कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, यहाँ पर भगवान का नाम देखिए उच्चारण करने से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ये बहुत एक इच्छाओं की पूर्ति। तो बताया गया कि वो लंकिनी ने अपने उल्टे हाथ, लंकिनी को हनुमान जी ने अपने उल्टे हाथ का मुष्टिक प्रहार करके एक ही बार में मार डाला, एक ही बार में। जब वो गिरी तो उसने बोला, ब्रह्मा जी ने मुझको ये वरदान दिया था कि कभी कोई वानर जब अपने हाथ से तुम्हारा मुष्टिक प्रहार करके तुमको मार दे, एक ही बार में तुम जो है नॉकआउट हो जाओ, एक ही बार में तमाम हो जाओ, गिर जाओ, तो फिर समझ लेना कि अभी लंका का क्या है, अंत आ गया है और अब राम उस पर राज्य करेंगे। तो अब देखा जाए, बोलेंगे प्रभु जी ये लीला अभी क्यों सुना रहे हो, रामनवमी थोड़ी है। इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये जो लंकनी है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स ईगो, ये जो है प्रतिनिधि है हमारे फॉल्स मिथ्या अहंकार की, जिसके कारण हमें लगता है मैं 15 साल का भक्त हूँ, आई वॉज बॉर्न 15 ईयर ओल्ड, आई एम 15 ईयर ओल्ड, पहले 15 साल पहले मेरा जन्म हुआ, मेरा 25 साल पहले मैं भक्त बना, मैं इतने साल पहले भक्त बना। हो सकता है कि कोई कल या आज भक्त बने, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए जितना 15 साल पुराना। जिसने भी हरि नाम की शरण ली, एक बार कृष्ण नाम उच्चारण किया, भगवान उसका भी उतना ही ख्याल रखेंगे जितना कि हमारा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो नए वाले को छोड़ देंगे और सीनियर वाले को ध्यान ज़्यादा रखेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जो जितना ज़्यादा प्रेम करेगा वो उतनी प्रगति से भगवान के आगे बढ़ता है। तो ये जो मिथ्या अहंकार रूपी लंकनी है, ये हमारे कानों के अंदर जो ये लंका रूपी हृदय है, क्योंकि इसमें कलमश भरा हुआ है ना, ये लंका जैसा बन गया, इसमें रावण का राज है, इस समय असुर राज है इसके हृदय हृदय में, है ना। और कृष्ण की जो कथा है इसमें घुसती नहीं, क्योंकि लंकनी जो मिथ्या अहंकार रूपी जो इसको घेरा बना के खड़ी है, वो आने नहीं देती है। तो किसकी जरूरत है हमको, हमको जरूरत है प्रभुपाद जैसे संतों की, वर्तमान आचार्य जैसे गुरुज की, वैष्णवाज की, जिनके साधु रूपी वचन, शास्त्र रूपी वचन एक मुष्टिक प्रहार कर उस कलमश को काट दें, उस लंकनी को काट दें, और फिर किसका राज होगा, राम का राज होगा, फिर उस जगह राम उस हृदय में विराजमान होंगे। लेकिन अभी हम चाहते ही नहीं है, वासुदेव में कथा रुचि ही नहीं है हमारे अंदर जीवन में, तो हम खुद ही चाहते हैं कि कलमश सदा भरा रहे, उससे भी आसक्ति हो गई है, अभी इतने सालों से भरा हुआ है, इसी को भरा रहे तो क्यों निकालने में लगे हो, ये कैसी आसक्ति है। तो हमको इसके प्रति भी आसक्ति हो गई है, हम जो है जानते नहीं है कि जप माला जो है वो जप माला नहीं है, गोलोक माला है। गोलोक ले जाने वाला रास्ता जो है वो जप माला, ये जप माला आपको सीधा गया है गोलोक ले जा सकती है। आप अगर गोलोक जाना चाहते हैं तो अपने जप माला को इतना प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए जैसे हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। बाकी लोग कितना प्रेम करते हैं बताएं आपको, एक भक्त बता रहे थे, सीनियर ब्रह्मचारी डिवोटी हैं, मतलब नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो अपना शेयर कर रहे थे, कह रहे हैं कि प्रभु जी मुझे ना जब से बस इतना ही प्रेम है कि जैसे 16 माला होती है मैं वैसे ही उसको कील पर टांग देता हूँ, फिर दूसरा दिन सुबह 4:30 बजे उठाता हूँ। तो कितना प्रेम, अगर पूरे दिन में मौका भी मिले तो भी जप नहीं करना चाहते लोग, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ 16 माला तक का ही टारगेट लेना चाहते हैं। प्रभुपाद ने मिनिमम 16 राउंड कहा, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि जप करना अलाउड नहीं है, उसके बाद करोगे तो तुम पापी हो जाओगे, नरक जाओगे, ऐसा बोला गया, कहीं नहीं बोला। उसके बाद जब भी समय मिले, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं माला लेकर निकलिए। आधे से ज्यादा लोग शर्माते हैं, कह रहे जिस घर पे करके निकलते हैं बाहर निकलेंगे लोग कहेंगे अरे ये तो बाबा जी बन गए, संत बन गए, साधु बन गए। अरे वो प्रचार करने का मौका है, जब आप निकलोगे तो लोग पूछेंगे ये क्या है, प्लास्टर लगा हुआ है हाथ में, तब बोलना नहीं है तो जप माला है, इससे हम जप करते हैं, ये गोलोक धाम जाने की माला है, प्रचार का मौका मिलता है। तो वैष्णवों को तो अपना आचरण ड्रेस पहनकर निकलना चाहिए हमेशा, सब जगह जहां भी जाए, शर्माना नहीं चाहिए कहीं पे भी। प्रभुपाद बोलते हैं पुलिस वाला जो होता है ना, वो फुल ड्रेस पहन के निकलता है, पूरी कैप वर्दी लगाकर, तब चालान बोलता रुको रुको, तो फिर आप रुकते, हाँ जी रुक जाते हैं, बेल्ट भी लगा लेते, खींचने लग जाते अगर नहीं लगा रखी होती तो, हेलमेट नहीं पहना होता तो निकालने लगते हैं आधा आधा, पुलिस वाले को देखते ही, है ना। और फिर जैसे ही वो बोलते हैं चालान तो हम कटवा भी लेते हैं, ठीक है 100 रुपये 500 हज़ार जो भी है। ऐसे ही अगर वो व्यक्ति ने ड्रेस ना पहनी हो, सिविल ड्रेस में हो, पैंट शर्ट में हो या अपने घर के कपड़ों में हो, और वो बोले रुको रुको, रुकेंगे हम, क्योंकि हम जो है जानते हैं कि अरे ये तो पुलिस वाला थोड़ी है। इसी प्रकार से हम अगर चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो, प्रभुपाद के मूवमेंट की स्थापना हो, तो हमको अपने वैष्णव ड्रेस को जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, घर में बाहर पार्क में इधर उधर जहां जाते हैं वहां पे वैष्णव ड्रेस, क्योंकि तभी तो हम जो है लोगों की लंकनी जो राज कर रही है उसको हम मार सकेंगे। तो ये दोनों लोगों के लिए, हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी। और जब के प्रति सिंसियरिटी के ऊपर थोड़ा सा और बोलूंगा 2 मिनट और उसके बाद हम समाप्त करेंगे, समय हो चुका है ऑलरेडी। जो ये भक्त होते हैं ना प्रभुपाद जी जैसे, ये शुद्ध चुंबक के रूप में है, बताते हैं चुंबक जैसे, मैग्नेट जैसे हैं, और हम कैसे हैं लोहे के छोटे छोटे, है ना। कृष्ण कैसे हैं चुंबक जैसे, और हम कैसे हैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन चुंबक का तो आकर्षण होता है लोहे के प्रति, और लोहे का चुंबक के प्रति, तो चिपक जाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं चिपक पा रहे, भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है उनके अंश हैं, हम क्यों नहीं चिपक पा रहे बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, जंग लग गया है ना। और ये जंग लगने के कारण जब जंग लग जाता है किसी लोहे के टुकड़े में, फिर चुंबक लगाओ तो फिर भी नहीं चिपकता। तो इस जंग को धोने का एक ही मात्र तरीका है, भगवान के नामों का जप और भगवान की कथा का श्रवण। जितना ज्यादा श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, उतना ये जंग अवरोधक जंग निकल जाएगी और फिर फट से चिपक जाएंगे। जरूरत नहीं है कि चिपकाने गए कोई एक स्पेशल सेरेमनी हो, यज्ञ किया जाएगा आज से आप कृष्ण से चिपक गए हो, ऐसा कोई सेरेमनी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली व्यक्ति चिपक जाएगा कृष्ण से जिस दिन वो शुद्ध चेतन, शुद्ध चेतना हो जाएगा। अभी हम कैसे, अशुद्ध चेतना, हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। इसलिए बोलते हैं, एक व्यक्ति बता रहे थे कि भक्ति के 5 A है, जप करने के 5 A। A फॉर एप्पल नहीं होता, जो A वो वाला A अल्फाबेट। A में अट्रैक्शन होता है, A फॉर अट्रैक्शन, ये पहला स्टेप है। हमें भगवान के नाम के प्रति अट्रैक्शन नहीं, A फॉर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं है, इसी कारण हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। फिर होता है जब अट्रैक्शन आता है उसके बाद हमको क्या होता है अटेंशन, फिर हम जप के प्रति ध्यान पूर्वक हो पाते हैं। पहले महिमा, उसके बाद फिर अटेंशन, अटेंशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, और फिर व्यक्ति जो है भक्ति के जप करते वक्त पूरा मग्न हो जाता है जप करने के अंदर। एब्जॉर्प्शन के टाइम पर व्यक्ति और कोई शब्द सुन भी नहीं पाएगा, है ना, कोई बोलेगा भी अरे इधर आओ इधर आओ, तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग कान में चल रहा होगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। ये एब्जॉर्प्शन आएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद अटैचमेंट आता है, फिर हमें नाम के प्रति इतना अटैचमेंट हो जाएगा कि 16 माला खत्म होंगी तो व्यक्ति रोने लग जाएगा, अरे 16 माला बस प्रभुपाद इतना 16 माला। अभी हम बोलते हैं क्या इतना 16 माला, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा व्यक्ति का, 16 माला व्यक्ति के लिए बहुत कम होगी, वो कहेगा मैं पूरा दिन जप क्यों नहीं कर सकता, पूरा दिन भगवान के नामों की शरण क्यों नहीं ले सकता हूं। अटैचमेंट, और फिर अफेक्शन होगा, कृष्ण प्रेम की जागृति होगी, उसको अफेक्शन हो जाएगा, वो हर वक्त रात को सोते वक्त भी सोचेगा कि कैसे भी करके मैं ये जप माला मैं अपने पास रखूं ताकि सबसे पहले सुबह उठते ये मेरे को मिले। एक भक्त बता रहे थे बॉम्बे गए थे तो बोले हम तो जब माला को ना अटैची होती है ना ट्रंक, उसके अंदर रख देते हैं, बोले कि बोले ताकि सुबह ढूंढने में देरी हो, जितनी देर से मिलेगी उतनी उतना हम आजादी है। वरना सीनियर डिवोटी बोलते हैं अरे जप नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं कल कहां रखा था पता नहीं भूल गए, ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे। हम खुद चाहते हैं कि जप माला हमसे दूर चली जाए, ये क्या टेंशन हमको दे दी है। क्या दिन था वो अभागा जिस दिन मैं मंदिर में चला गया इस्कॉन में, कौन सा वो दिन था जिस दिन मुझे जप माला की ड्यूटी मिल गई। इस तरह की सोच जब तक हमारी रहेगी तब तक हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम का जागृत होना नामुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कृष्ण प्रेम जागृत हो तो आपको इस प्रकार से रखना चाहिए कि जब आप रात को सोएं तो आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे कल सुबह आपके घर पे मान लीजिए कोई आने वाला है, आपका बहुत पुराना रिश्तेदार जो 10 साल से नहीं मिले, तो रात को नींद नहीं आती, उसको स्टेशन लेने जाना, अपने आप लोग 2:30 बजे उठ जाते हैं, ट्रेन में भी चले जाते हैं, स्नान भी कर लेते हैं, उसको लेने दिल्ली रेलवे स्टेशन से ड्राइविंग भी हो जाती है, लेकिन जब करना होता है तो डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति अफेक्शन है और इसके प्रति अफेक्शन नहीं है हमारे जीवन में, है ना। और कथा के प्रति एक रुचि की बात बताता हूं, बहुत आनंद देने वाली, जिसका समय हो गया प्रसादम का। बोलते हैं एक भक्त बता रहे थे जब मैं प्रवचन देता हूं तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहता, मैं क्या कहता हूं महाप्रसादे गोविंदे, क्यों? क्योंकि जो भक्त हैं वो अपना जप करते रहते हैं मंदिर के प्रांगण के बाहर, मंदिर के प्रांगण में आ गए उसके बाद भी जप कर रहे हैं, या फिर जो है घूम रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कथा चल रही है वासुदेव कथा, उसके प्रति कोई रुचि नहीं है, और अनगिनत तरह के कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति को कि कथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, आप आया करिए मंदिर। अब तुम आ गए, तुम क्या कर रहे हो है? तो उस व्यक्ति को मंदिर के अंदर आ जाना चाहिए और उसके बाद कथा सुननी चाहिए। इसलिए वो भक्त बोले, मैं ये नहीं बोलता ओम नमो भगवते, तो जैसे ही लोग भक्ति मंदिर में होते भी है ना दर्शन आरती वो गुरु पूजा के बाद, तो धीरे धीरे टहल जाते हैं बाहर की तरफ, पर कथा शुरू हो गई, और फिर जो महाप्रसाद है गोविंद है तो जहां और चलो चलो प्रसाद शुरू हो गए, तो फटाफट से लाइन बढ़ जाएगी, डबल हो जाते हैं। तो बोलते हैं मैं कथा के प्रवचन शुरू करने से पहले ही बोलता हूँ महाप्रसाद है गोविंद है, तो है ना लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, लोग कहते हैं अरे आज क्या हो गया, जल्दी प्रसाद शुरू हो गया, चलो चलो मिस हो जाएगा, अंदर आते हैं तो फिर भाग नहीं सकते, भक्त देख रहा है अरे बैठ जाओ चुपचाप से। तो ऐसी रुचि ना हो, जितनी प्रसाद के प्रति रुचि है इतनी कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो पाएगा। हरे कृष्ण श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौर निताय की, पद तपावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेम आनंद।
कितनों का क्लास अच्छा लगा? हैवी कोर्स तो अच्छा नहीं लगा? तो आप में से कौन है जो बिल्कुल माला नहीं करते हैं? है कोई? नहीं करते हो? और कोई है? नहीं करते। जैसे आज प्रभु ने बताया, शास्त्र में लिखा है कि मधुरम मधुरे पावनम पावने केवलम। जो संसार है अनंत बड़ी ब्रह्मांड है, इसमें कुछ मीठा है तो वो क्या है? हरिनाम है। और भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं नाम बिना किसी नाई के आरव 14 भुवन में आते, जो 14 भुवन है उसमें तो हरिनाम है, इससे बढ़कर किंतु चीज है ही नहीं है। लेकिन हम लोग को मनी अच्छा लगता है, मंत्र अच्छा लगता है, इसलिए आप जन्माष्टमी आ रही है तो आप लोग आए हैं तो कुछ, जैसे हम लोग टारगेट बनाते हैं कि इतना पैसा कमानी है, ये घर बनाना है, तो हम उनको भी टारगेट बनानी है कि आप जन्माष्टमी आ रहा है तो मुझे कितना मतलब पहुंचना है। तो आप में से कौन कौन है जन्माष्टमी पहले 16 मतलब पहुंच जाएंगे? सब। जो 16 मतलब नहीं कर रहे हैं वो 16 मतलब पहुंचने का प्रयास कीजिए, जो 16 मतलब कर रहे हैं हमेशा मालूम होते हैं ध्यान पूर्व करने का प्रयास कीजिए। बाकी जैसे प्रोग्राम बताया अगर है तो एक्स्ट्रा भी कीजिए, लेकिन ज्यादा जरूरी है ध्यान पूर्वक। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया, उत्साहपूर्ण एंथुसियास्टिक, तो हम प्रभु जी का भी धन्यवाद करेंगे। एक बार लाओ ये हरे कृष्णा महामंत्र बोल के,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इंद्रेश प्रसाद प्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सुप्रिय गौर भक्तवृंद की जय, हरे गौर प्रेमानंद की जय। सबके प्रसाद है कृपा वृंदावन।
आप सुन सुनो, मुझे लगा सारा क्लास मेरे को ही है।